नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। इसराइल के हमले जारी रहने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम प्रभावी। जापान की सत्तारूढ़ एलडीपी जेआईपी के साथ गठबंधन पर सहमत, सानेई तकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर। यमन के अदन तट पर कैमरून ध्वज वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में आग लगने के बाद 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया। देश और विदेश में दीपावली हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, कई देशों के नेताओं ने शुभकामनाएं दी। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 203 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम कायम है, हालांकि इसराइल अब भी घातक हमले जारी रखे हुए है। राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इसराइल ने आज गजा पट्टी पर हवाई हमले फिर शुरू कर दिए। हमलों में एक पत्रकार सहित 15 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। राफा के पास एक विस्फोट में 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद ये घटना हुई है। इजरायली सेना के अनुसार झड़पें तब शुरू हुई जब हमास के लड़ाकों ने कथित तौर पर राफा में तैनात इजरायली सैनिकों पर टैंक रोधी मिसाइल दागी और गोलीबारी की, जिसमें 2 सैनिक मारे गए। उधर हमास ने कहा है कि वो युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसराइल युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिससे द्विपक्षीय संघर्ष बढ़ने की आशंका है। इस बीच श्री ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आज इसराइल पहुंचे। उनके प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मिलने की उम्मीद है, जबकि अमरीकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल वार्ता में शामिल होने वाले हैं। जापान इनोवेशन पार्टी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने पर सहमत हो गई है। जापान इनोवेशन पार्टी ने कहा कि वो एलडीपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कल नए प्रधानमंत्री चुने जाने के समय कट्टरपंथी रूढ़िवादी नेता सानेई तकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। ओसाका के गवर्नर और इशिन नेता हिरोफुमी योशिमुरा ने कहा कि राजनीति में नए रास्ते खोलने और जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाने की बात होनी चाहिए। वर्ष 2010 में गठित इशिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आवृजन पर तकाइची के कट्टर रुख को साझा करती है। इस महीने तकाइची के नेता बनने के बाद उदारवादी कोमोइतो पार्टी ने एलडीपी के साथ अपने 26 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया है। यमन के अदन तट पर कैमरून ध्वज वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट की घटना के बाद चालक दल के 23 सदस्यों को बचा लिया गया है। ये सभी सदस्य भारतीय हैं। ये घटना कल उस समय हुई जब जहाज अदन तट से लगभग 113 समुद्री मील की यात्रा कर दक्षिण अफ्रीकी देश जिबूती जा रहा था। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। यूरोपीय संघ नौसेना बल के रक्षात्मक समुद्री अभियान एस्पाइट्स के अनुसार चालक दल के 2 सदस्य अभी भी लापता हैं। एक सदस्य के एमवी फाल्कन में फंसे होने की आशंका है। यमन के हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक केंद्र पर हमला कर संयुक्त राष्ट्र के 24 कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। यूएन के प्रवक्ता जीन आलम ने कहा कि कर्मचारियों को सना के दक्षिण पश्चिमी हादा इलाके में स्थित एजेंसी के परिसर में रखा गया है। ये कर्मचारी सूत्रों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों से जुड़े हैं। इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ और मानवीय मामलों के में कार्यालय शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में कम से कम 5 यमन के नागरिक भी हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली स्थित विदेशों के दूतावासों ने आज दिवाली समारोह का आयोजन किया और सांस्कृतिक सद्भावना के भावपूर्ण प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। फिनलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ के दूतावासों ने इस अवसर को हर्षोल्लास और रंग से भर दिया। फिनलैंड दूतावास ने इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी, दोपहर के भोजन और नृत्य का आयोजन किया। दुनिया भर में आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई देशों के नेता भी इस त्योहार के सार्वभौमिक विषयों आशा, नवीनीकरण और अंधकार पर प्रकाश की विजय पर हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के नेताओं ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं और विभिन्न संस्कृतियों में शांति और एकजुटता को बढ़ावा देने में दिवाली के महत्व को स्वीकारा है। इस अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर ने अपनी हाल की भारत यात्रा का स्मरण किया, जहां उन्होंने मुंबई में भक्ति और नए बंधनों के प्रतीक के रूप में दीप प्रज्वलित किया। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भी अपने दिवाली संदेश में प्रकाश सदैव बना रहने की कामना की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव का आज दूसरा दिन है। आज कुकुर तिहार मनाया जा रहा है। तिहार उत्सव का पहला दिन यम पंचक होता है। इस दिन लोग कौओं को भोजन कराते हैं। ये उत्सव मानव और कुत्तों के सहचारे का उत्सव और कुत्तों की वफादारी तथा परोपकार की सराहना के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को रोशन करते हैं और आसपास की सफाई भी करते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की 20वीं केंद्रीय समिति का चौथा पूर्ण अधिवेशन आज बीजिंग में शुरू हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव ने केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की ओर से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रपति ने पार्टी नेतृत्व से राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 2026 से 2030 तक की 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने का आह्वान किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस महत्वपूर्ण बैठक में अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास का एजेंडा तय किए जाने की आशा है। दक्षिण अमरीकी देश बोलीविया में मध्यमार्गी सीनेटर रॉड्रिगो पाज ने देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। रॉड्रिगो पाज ने अपने रूढ़िवादी प्रतिद्वंद्वी जॉर्ज टूटो क्विरोगा को हराया। एक रिपोर्ट।
बोलीविया के चुनावी न्यायाधिकरण के अनुसार शुरुआती परिणामों में पाज ने 54.5% वोट हासिल किए, जबकि क्विरोगा को 45.5% वोट मिले। पाज की पार्टी के पास देश की विधायिका में बहुमत नहीं है, जो उन्हें गठबंधन बनाने के लिए मजबूर करेगा। नए राष्ट्रपति 8 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। 58 वर्षीय सीनेटर की जीत दक्षिणी अमरीकी देश के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। विश्व दर्पण के लिए चाहत।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपने विकासशील सदस्यों के लिए एडीबी की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 3 अरब अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज ईईए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने आज कहा कि ये समझौता विश्व बैंक के साथ एडीबी का पहला ईईए और 2020 के बाद से अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ उसका छठा ईईए है। पाकिस्तान में आज सरकारी गैस कंपनी की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों पर तालिबान आतंकियों के घातक हमले में 5 जवान मारे गए और लगभग 12 घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले के कोट लालू के पास ये घटना हुई। वहां ये सैनिक सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। आईसीसी महिला विश्व कप में आज नवी मुंबई में डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को जीत के लिए 203 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर श्रीलंका बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर में 202 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से हसीनी परेरा ने सर्वाधिक 85 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की गेंदबाज शोमा अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 194 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसराइल के हमले जारी रहने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम प्रभावी। जापान की सत्तारूढ़ एलडीपी जेआईपी के साथ गठबंधन पर सहमत। सानेई तकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर। यमन के अदन तट पर कैमरून ध्वज वाले एलपीजी टैंकर एमवी फॉल्कन में आग लगने के बाद 23 भारतीय चालक दलों के सदस्यों को बचाया गया। देश और विदेश में दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कई देशों के नेताओं ने शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।